भक्तजनों, बहनों, भाइयों एवं बालक बालिकाओं, आज मैं स्वाध्याय से प्रथम गीता के श्रीमद भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का पाठ करूंगी। इससे पूर्व मैं आपको एक अपने एक भक्त का पत्र पढ़कर सुनाऊंगी और उन भक्त की दशा के विषय में भी कुछ बताऊंगी। अच्छा, पत्र है, पत्र लिखने वाला लिखते हैं फ्रॉम बीडी शर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, श्याम नगर, धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, एचपी। वेट है 30/7/2020। परम आदरणीय गीता मां जी, सादर प्रणाम। मैं इस बार दान राशि देने से कुछ देर हो गई है, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी प्रिय धर्म पत्नी निर्मल शर्मा जी 15/12/2019 को शिवलोक पधार गई हैं। मैं 30/12/2019 को अपने छोटे बेटे भूपेश शर्मा, जो आजकल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन में कार्यरत है, के पास चला गया था। पिछले महीने ही वापस धर्मशाला आया हूँ। इस कारण राशि में भेजने में देरी हो गई है, क्षमा करें गिरी शर्मा। पत्र तो सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि उनकी धर्म पत्नी की का देहांत हो गया है, तो मैंने उनको फोन किया, तो फोन उन्होंने उठाया, प्रणाम किया। जैसे मैंने पूछा निर्मल शर्मा जी के विषय में, कहा कि बड़ा दुख हुआ कि निर्मल शर्मा जी सुप्रीम पधार गई हैं, तो वो फूट फूट के रोने लगे। पहले तो उनके मुंह से आवाज ही नहीं आई। मैंने क्या, मैंने कहा बीडी शर्मा जी बोल रहे, कोई और होगा? मैंने पूछा बीडी शर्मा जी आप ही हैं? तीन बार पूछा आप ही हैं? तो मुझे रोने की आवाज तो आई, लग रहा है रो रहे हैं, पर बीडी शर्मा रो रहे होंगे। फिर पूछा तो उन्होंने कहा हाँ माँ जी रोते हुए कहा कि ऐसी बात घटना घट गई है। फिर एक दो बातें बड़ी मुश्किल से मैंने उनके साथ की, उनको थोड़ा सा हौसला दिया, सांत्वना दी कि जो आया है उसको जाना है, जो गया है उसको आना है। तो मस्तों ने बहुत पहले बोल लिख दिया था जब मनोहर जी का देहांत हुआ था, तो मस्तों ने कागज पर लिख दिया था कि जो आया है वो जाना है, जो गया है वो आया आएगा। तो फिर उसी पर मैंने उनको थोड़ा सा सत्संग करवाने का प्रयत्न किया, पर उनका रोना जो था सिसक कर रहे जैसे कोई बच्चा होता है, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, हार्दिक वेदना पहुंची मुझे कि क्या ये संयोग और वियोग है, किस प्रकार जीव आते आपस में संबंध में बंध जाते और जीव उसको हमेशा के लिए अपना मान लेता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, और जब बिछड़ जाते हैं, वियोग होता है, तो बस फिर आंसू बहाने लगते हैं। ये है संसार। बड़ी कठिनाई से उनको संभाला, फोन में उनको कहा कि कोई बात नहीं। फिर पूछा आपकी लड़कियां? हाँ, कहते जी दो है, तो योल कैंप पे वो है हेल्थ ऑफिसर, और दूसरी पता नहीं कहा होता ही, और बेटा एक सोलन वाले का अमेरिका में। मैंने कहा शर्मा जी आप ऐसा करना कि 4 महीने मंदिर में आ जाया करना, महादेवी तीर्थ में, जो भी 4 महीने आपको अच्छे लगे, बाकी इसमें आप अपने बेटों के पास जाओ, बेटियों के पास जाओ, और इस प्रकार दुखी होकर के अकेले घर में मत बैठो। मैंने कहा आपके पास कौन है? कहते एक आदमी है जो मेरा काम कर देता है। पर ये सब बातें उन्होंने सिखते हुए, जैसे छोटा बच्चा रोते हुए बताता माँ ये हो गया माँ ये, उन्होंने मुझे बताया। फिर थोड़ा सा इसमें क्या ज्ञान देना था, मैंने उनको इतना ही कहा कि वियोग के बाद संयोग है और संयोग के बाद वियोग है, ये भगवान की लीला है और इसको हमें दिल से अपनाना होगा, समझना होगा और इस दुख को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। अब मैं गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ती हूँ। माया अध्यक्षेन प्रकृति शून्य से सचराचरम हेतु नाने कौन तय जगत विपरीत वर्तते। भगवान कहते हैं, ये भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समाप्त का प्रतिनिधि मान कर हमें बताते हैं भगवान, मेरी प्रकृति प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर अचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, लेकिन भगवान ने क्या बता दिया इस वाक्य में, अध्यक्षता में मेरी देख रेख में। अध्यक्ष कौन होता है? जो अपने समूह की देख रेख करता है। तो भगवान तो पूरी प्रकृति के पूरे ब्रह्मांड के अध्यक्ष है, उनकी देख रेख में जो नेचर है, ये कुदरत है, प्रकृति है, ये संपूर्ण जगत की रचना करती है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, चर है चाहे अचर है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। और बताते हैं कि यही कारण है कि ये जो संसार हमें दिखाई देता है इसमें परिवर्तन होता रहता है। कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो हमारी जिंदगी में हमेशा जीवन में कुछ रस नहीं रहता, सुनी सुनी लगती है, रसहीन लगती है। ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। भगवान कहते हैं मेरे से ही कुदरत कहाँ से लेती है शक्ति? कुदरत तो जड़ है ना, ये वृक्ष है जड़ है, लेकिन हम देखते हैं पत्ते झड़ाती है, पत्ते झड़ जाते हैं और दो चार महीने वो ठूठ खड़ा रहता है, लगता है कि ये सूख गया अगले सीजन में, अगले मौसम में इसमें पत्ते आएंगे कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम आता है उस ठूठ में पत्तियां कोमल कोमल शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो ये क्या है? ये सब क्रियाएं जो है ये कुदरत में होती हैं, लेकिन कुदरत को किससे शक्ति मिलती है? भगवान से। ये क्रियाएं जो है एक्टिविटीज, ये भगवान में नहीं है, भगवान में लेप है, एक शक्ति है वो, एक प्रकाश है वो। इसलिए ये सब परिवर्तन किसमें होता है? कुदरत में, क्योंकि वो ठूंठ है अब हरा भरा हो गया, कभी सूख जाएगा तो काट देंगे जला देंगे, ऐसे मनुष्य का हाल है। परमात्मा तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, परमात्मा में कहते हैं कोई अंतर नहीं होता। प्रकृति ऐसे ही जीव, जैसे भगवान को में कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रकृति में आता है, फल फूल सब उसमें लगते हैं, ऐसे ही जीव जीवात्मा जो हमारे भीतर है वो सदा निर्लिप्त है और असंग भी है, उसको किसी का साथ नहीं चाहिए और किसी में वो आसक्ति भी नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को असक्त बना दिया है प्रकृति से जुड़कर, संबंधों से जुड़कर हमने अपने आप को असक्त बना दिया, हमने लिप्त नहीं रह पाते, असंग नहीं रह पाते, कभी अकेले रहना पड़ जाए तो लोग हाय हाय कहते हो आए तो वही आया ही, आए तो बात ही नहीं, आए तो चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन परमात्मा इन सबसे और परमात्मा का अंश जो जीव है इससे अलग है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मन के चक्कर में घूमता है। अब यह क्या डिफरेंस बताया, ऋषि बहुत समझने वाली बात है कि कुदरत जो है ये तो भगवान के अधीन है, बताया ना, और फिर अधीन रहकर क्या करती है, वो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करती है और सृष्टि में भी नाना नाना अनंत प्रकार के फल फूल रंग रूप क्या क्या नहीं हम देखते हैं। लेकिन जीव क्या करता है, जो हमारे भीतर बैठा है, जो परमात्मा का अंश है, वो क्या करता है, प्रकृति के अधीन हो जाता है। प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन या और जो भी कुछ होता है उसके अधीन हो जाता है। हमारे पास प्रकृति में पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, तो कभी हम ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं और तो कभी हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर क्या होता है, जब हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो जन्म और मरण के बंधन में फंस जाते हैं। अब हमारा जन्म भी होता है और मरण भी होता है, इसलिए जीव को चाहिए कि वो प्रकृति के अधीन ना हो। ये तो भगवान की लीला है, ये फल फूल भी लगने, ये सब कुछ होना है, ये तो है लॉ ऑफ नेचर, हमें उससे अधीन फंसना नहीं है। परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीव आत्मा जो हम सब हैं, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है भाई, है तो हमें कैसे, वही प्रकाश ट्यूब में है, वही प्रकाश बल्लभ में है, फिर से हम अधीन होते हैं। है तो प्रकाश ये की जो परमात्मा का है वो हमारे भीतर है, वो क्या है कि हमें सुख की इच्छा होती है कि हमें कुछ ऐसा वस्तु मिल जाए,